प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक संदेश में कहा कि भारत और नेपाल के बीच मित्रता को और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए वे मिलकर काम करेंगे। श्री ओली ने आज चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल ने नवनियुक्त 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। नेपाली कांग्रेस के प्रकाश मान सिंह और सीपीएनयूएमएल के विष्णु प्रसाद पौडौल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए को 25 लाख डॉलर की पहली किश्त आज जारी कर दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए 50 लाख डॉलर के योगदान की घोषणा की थी। इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। भारतीय मिशन ने कहा है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के माध्यम से 3.5 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनआरडब्ल्यूए के सम्मेलन में भारत ने घोषणा की थी कि वित्तीय सहायता के अलावा वह एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दवाइयां भी उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल से मॉरिशस के 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉट से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री मॉरिशस के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा होगी। इस यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, सागर दृष्टिकोण और ग्लोबल साउथ के विचारों के महत्व को बल मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया। हालांकि पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम ने 12 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों पर पुलिस पर गोलाबारी, हत्या, विस्फोट, डकैती और अपहरण में शामिल होने का आरोप है। इन 12 माओवादियों में से 5 को मोटापाल के जंगल से और 7 को तर्रेम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 माओवादियों पर 4 लाख रुपए का इनाम था। कोयला मंत्रालय ने आज 7वें चरण के दूसरे प्रयास के अंतर्गत 3 कोयला खदानों की नीलामी के लिए कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौते को लागू कर दिया है। व्यावसायिक कोयला खनन के तहत मच्छाकाटा कोयला खान, कुडानली लुबरी कोयला खदान और सखी गोपाल बी काकुहारी से संबंधित कोयला खदान के लिए समझौते लागू कर दिए गए हैं। भारत में खरीफ फसल की बुआई 575 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान लगभग 50 लाख हेक्टेयर की तुलना में 62 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दालों की खेती हुई है। तिलहन की खेती 140 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 115 लाख हेक्टेयर से अधिक है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।